श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 127। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सप्त भूमिकाएं जो तुमसे कही है, इन्हीं से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अन्य साधनों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हे रामचंद्र जी, जब पुरुष ज्ञानवान हो तब जानिए कि उसकी वृत्ति प्रथम भूमिका में स्थित हुई है। इससे तुम भूमिका की ओर चित्त रूपी चरण रखो, तब तुमको स्वरूप की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, तीसरी भूमिका तक सब कामनाएं निवृत्त होती है, केवल एक आत्मपद की कामना रहती है। यदि उस अवस्था में शरीर छूट जाए तो मनुष्य और जन्म पाकर ज्ञान को प्राप्त होता है, और यदि चतुर्थ भूमिका में प्राप्त होकर शरीर छूटे तो फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि आत्मपद की प्राप्ति होने पर फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जन्म का कारण इच्छा है। जब कुछ इच्छा नहीं रही तब जन्म भी नहीं रहा। जिसको चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है उसको स्वरूप की प्राप्ति होती है, तब फिर इच्छा कैसे हो? जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही उसका चित्त ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाता है, क्योंकि वह सत्यपद को प्राप्त होता है। इसी से वह जन्म नहीं लेता और मरता भी नहीं, संसार को स्वप्नवत देखता है। पंचम भूमिका वाला सुषुप्ति की तरह होता है। छठी भूमिका साक्षी रूप तुरिय पद है। सप्तम तुरियातीत निर्वाच्य पद है। हे रामचंद्र जी, इतना कहने का प्रयोजन यही है कि वासना का त्याग करो और अचित्त पद को प्राप्त हो। इसका अभिमान होना ही वासना है। जब इसका अभिमान निवृत्त हो तब शांति होगी। परिचिन्न अहंकार न रहेगा। आत्मा के अज्ञान से अहंभाव हुआ है और आत्मज्ञान से यह लीन हो जाता है। हे रामचंद्र जी, संसार एक नदी है, उसमें आधि व्याधि उपाधि रोग तरंग है। राग द्वेष रूपी छोटे मच्छर है और तृष्णा रूपी बड़े मच्छर है। उसमें जीव दुख पाते हैं। जैसे जल नीचे को चला जाता है, वैसे ही मृत्यु के मुख में संसार चला जाता है। उसमें अज्ञान ही जल भरा है। हे रामचंद्र जी, तृष्णा से पुरुष बंधे हैं। इससे तुम हाथी की तरह वैराग्य और अभ्यास रूपी दांतों से तृष्णा रूपी जंजीर को काटो। हे रामचंद्र जी, तृष्णा रूपी सर्पिणी विषय रूपी फुत्कार से विचार रूपी बेल को जलाती है। इसे जीव रूपी किसान दुख पाता है। इससे तुम वैराग्य रूपी अग्नि से उस सर्पिणी को जलाओ। हे रामचंद्र जी, तृष्णा दुखदाई है। जब तक तृष्णा है तब तक संतों के वचन हृदय में स्थान नहीं पाते। जैसे दर्पण पर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही तृष्णावान के हृदय में संतों के वचन नहीं ठहरते। तृष्णा के इतने नाम हैं, तृष्णा, अभिलाषा, इच्छा, पूर्णा, संस्कृति, ये सब इसी के नाम हैं। इच्छा रूपी मेघ ने ज्ञान रूपी सूर्य को ढका है, इसे वह नहीं चमकता। जब विचार रूपी पवन चले तब इच्छा रूपी मेघ नष्ट हो जावे और आत्मरूपी सूर्य का साक्षात्कार हो। हे रामचंद्र जी, यह जीव आकाश का पक्षी है, पर कर्म में इच्छा रूपी तागे से बंधा है, इसे नहीं उड़ सकता और परमात्म पद को भी प्राप्त नहीं होता। यह इच्छा ही से दीन है। जब इच्छा नष्ट हो तब आत्मस्वरूप प्राप्त हो, इससे तुम इच्छा का नाश कर आत्मपरायण हो, अर्थात विषय संसार से वैराग्य और आत्म अभ्यास करो। हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमसे भूमिका का क्रम कहा है, इसमें जब आवे तब ज्ञान की प्राप्ति हो, पर इनको तब प्राप्त होता है जब कि एक हथिनी को जीते, जो एक वन में रहती है। महाउत्तम रूप उसके दो पुत्र हैं, जो अनेक जीवों को मारकर अनर्थ करते हैं। उसके जीतने से सब जगत जीता जाता है। राम जी ने पूछा है, भगवान ऐसी मत्त रूपी हथिनी कौन है और कहाँ रहती है? उसके दांत और पुत्र कौन है? कैसे वह मरती है? कैसे उत्पन्न हुई है और कौन वन है? यह सब मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इच्छा रूपी हथिनी और शरीर रूपी वन है। वह मन रूपी गुफा में रहती है। इंद्रिया उसके बच्चे और संकल्प विकल्प दांत है, उससे वह छेदती है। हे रामचंद्र जी, एक नदी है जिसका प्रवाह सदा चला जाता है। उसमें दो मच्छर रहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। संस्कृति ही नदी है जिसमें राग द्वेष मच्छर रहते हैं, वे नष्ट नहीं होते हैं। हे रामचंद्र जी, वे मच्छर तब नष्ट हो जब संसरण रूपी जल नष्ट हो। उसके सकृत और दुष्कृत रूपी दो किनारे हैं, उसमें चिंता रूपी ग्राह रहता है। कर्म रूपी लहरें हैं, उनमें जीव रूपी तृण आकर भटकता है। इस तृष्णा रूपी विष बेली का नाश करो। हे रामचंद्र जी, तृष्णा रूपी अंकुर को बढ़ाना घटाना अपने ही अधीन है। जो अंकुर को जल दीजिए तो बढ़ता जाता है, और जो न दीजिए तो जल जाता है। स्फुरण रूपी जल देने से तृष्णा रूपी अंकुर बढ़ता जाता है, और न देने से स्वरूप के अभ्यास द्वारा जल जाता है। हे रामचंद्र जी, तृष्णा रूपी बड़ा मच्छर है जो धैर्य आदि के मांस को भक्षण करने वाला है। उसे वैराग्य रूपी कंडी और अभ्यास रूपी दांतों से नष्ट करो। हे रामचंद्र जी, इच्छा का नाम बंधन है और निरिच्छा का नाम मुक्ति। हे रामचंद्र जी, एक सुगम उपाय कहता हूं जिससे तृष्णा नष्ट हो जाएगी। निज अर्थ की भावना करो तो उस भावना से शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी, तुम्हारी जय होगी और तुम सबसे उत्तम पद को प्राप्त होंगे। फिर तुम्हें वासना न रहेगी, शरीर की चेष्टा स्वाभाविक होगी और सब संकल्प नष्ट हो जाएंगे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि निज अर्थ की भावना से वासना नष्ट हो जाएगी और शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। सो वासना तो चिर काल से चित्त में स्थित है, वह एक बार की कैसे नष्ट होगी? आप कहते हैं कि वासना के नष्ट होने से जीव जीवन मुक्त होता है, पर जिसकी वासना नष्ट होगी उसका शरीर कैसे रहेगा? वासना बिना चेष्टा क्यों कर होगी, और जीवन मुक्त पद कैसे प्राप्त होगा? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मेरे वचनों को जो कानों के भूषण है सुनने से दरिद्र न रहेगा, निज अर्थ के धारण से संशय नष्ट हो जाएंगे और आत्मपद की प्राप्ति होगी। उस निज अक्षर के तीन अर्थ है, एक तो अन्य के अर्थ है, कि पंचभौतिक शरीर से तुम्हारा स्वरूप विलक्षण है, और दूसरा अर्थ विरुद्ध है, अर्थात शरीर जड़ और तमरूप है और तुम्हारा स्वरूप आदित्य वर्ण और तम से परे है। हे रामचंद्र जी, जब तुमने ऐसे धारणा की कि मैं आत्मा हूं और यह देह आदि अनात्मा है, तब देह से मिलकर अभिलाषा कैसे रहेगी? मतलब यह कि अभिलाषा न करोगे, क्योंकि जब तक जाना नहीं तब तक अभिलाषा है। तीसरा अर्थ यह है कि सबका अभाव है, अर्थात न मैं हूं और न कोई जगत है। जब ऐसे जाना तब किसकी इच्छा रहेगी, अर्थात किसी की न रहेगी। अथवा जो तुम अपने को देह से विलक्षण आत्मा जानोगे तो भी अविद्याकृत तम रूप शरीर की अभिलाषा न रहेगी। हे रामचंद्र जी, देह तम रूप है और तुम आदित्य वर्ण अर्थात प्रकाश रूप हो। तुम्हारा और इसका क्या संयोग? जैसे सूर्य के मंडल में रात्रि नहीं दिखती, वैसे ही जब तुम अपने को प्रकाश रूप जानोगे तब तम रूप संसार न दिखेगा, तब शरीर की चेष्टा स्वाभाविक होगी और तुम में कुछ चेष्टा न होगी। जैसे अर्ध निद्रा वाले की चेष्टा होती है, वैसे ही चेष्टा होगी और तुमको बालक की तरह अभिमान न होगा। जैसे बालक को उन्मत्त चेष्टा होती है, वैसे ही तुम्हारी चेष्टा भी स्वाभाविक होगी। हे रामचंद्र जी, यदि तुम यह इच्छा करो कि यह सुख हो और यह दुख न हो तो कदापि वह न होवेगा। जो कुछ शरीर का प्रारब्ध है सो अवश्य होता है, परंतु ज्ञानवान के हृदय से संसार की सत्यता जाती रहती है और स्वाभाविक चेष्टा होती है, इच्छा नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, जैसे कोई पुरुष किसी देश को जाता है और पहुंचने का समय थोड़ा हो तो वह मार्ग के स्थान देखता भी है परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, वैसे ही चित्त को आत्मपद में लगाओ, ऐसा शरीर पाकर यदि आत्मपद न पाया तो कब पाओगे? जो आत्मपद से विमुख है वह वृक्ष आदि के जन्मों को पावेगा। इससे हे राम, चित्त आत्मपद में रखो और स्वाभाविक इच्छा बिना चेष्टा करो। इच्छा ही दुखदायक है, जब इच्छा नष्ट होती है तब उसी को ज्ञानवान तुरीय पद कहते हैं, जहां जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव हो वही तुरीय पद है। हे रामचंद्र जी, ये जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं जहां न पाइए वही तुरीय पद है। जब संवेदन स्फुरण या अहंकार का अभाव हो जावे तब तुरीय पद प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, अहंकार का होना दुखदायक है, जब इसका नाश हो तभी आनंद मिलता है। आत्मपद से भिन्न जो माया की रचना है उससे मिलकर जीव अपने को जानता है कि मैं हूं, यही अनर्थ है। इसे अहंकार का त्याग करो। जिसको देखकर यह अहंकार फुरता है उसका निज अर्थ की भावना से नाश करो, और जो आत्मपद से भिन्न भासित होता है उसे मिथ्या जानो। यही निज अक्षर का अर्थ है। जो कुछ संसार भासित होता है उसको स्वप्न मात्र जानो। इसको सत्य जानकर इसकी इच्छा करना ही अनर्थ, और मिथ्या जानकर इच्छा न करना कल्याण है। हे रामचंद्र जी, मैं ऊंची बाह करके पुकारता हूं पर मेरे वचन कोई नहीं सुनता, कि इच्छा ही संसार का कारण है और इच्छा से रहित होना ही परम कल्याण है। जब जीव इच्छा से रहित होता है तब शांत पद को प्राप्त होता है। निरीक्षित होने पर आत्मा ही भासित होता है, जो आनंद रूप सम और अद्वैत है उसमें जगत का अभाव है। हे रामचंद्र जी, मोह की बड़ी महिमा है। हृदय में जो आत्मरूपी चिंतामणि स्थित है उसको विस्मरण करके मूर्ख अहंकार रूपी कांच को ग्रहण करते हैं। हे रामचंद्र जी, तुम निर्अभिमान होकर चेष्टा करो। जैसे यंत्र के पुतले में अभिमान नहीं होता और वह चेष्टा करती है, वैसे ही प्रारब्ध वेग से तुम्हारी चेष्टा होगी। यह अभिमान तुम न करो कि ऐसे हो और ऐसे न हो। जब ऐसे होंगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे, जहां वाणी की गति नहीं ऐसे आनंद को प्राप्त होंगे। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।